ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने बीजापुर में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि बस्तर रेड कॉरिडोर से डेवलपमेंट कॉरिडोर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया, वहीं जिले में 7 माओवादी गिरफ्तार। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य 3 दिवसीय प्रवास पर कल बिलासपुर आएंगे। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, चेक बाउंस, जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक, विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन प्रकरण सहित अनेक मामलों का निराकरण आपसी राजीनामे से किया गया। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर आज बीजापुर जिला मुख्यालय में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर द्वारा एक दिवसीय वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और बस्तर सांसद महेश कश्यप शामिल हुए। इस मौके पर जिले के पत्रकारों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि कभी नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र आज विकास के मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर रेड कॉरिडोर से डेवलपमेंट कॉरिडोर बनने की दिशा में बढ़ रहा है।
मार्च 2026 तक हमारा पूरा भारत देश नक्सल मुक्त देश बनेगा और इसी दिशा में हम सब लोग काम कर रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र की जीत का प्रतीक होगा, कि हमारे समूह तेलंगाना के बलिदानों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यह आदिवासी समाज के लिए एक नए युग का आरंभ है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब हम सब मिलकर कहेंगे कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है।
कार्यक्रम में कलेक्टर संबित मिश्रा ने पत्रकारों को प्रधानमंत्री आवास योजना, नियद नीलानार और अटल डिजिटल सेवा सहित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। वहीं पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि जिले में 24 नए कैंप की स्थापना की गई है। इस साल 197 माओवादी मारे गए हैं, जबकि 718 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश की 3 करोड़ जनता के आरोग्य के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार करेंगे। राज्य सरकार ने पिछले 20 महीनों में स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करते हुए दुर्गम अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का कार्य किया है। श्री साय ने आज रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय डेंटल कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ अवसर पर ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कार्यक्रम को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी संबोधित किया। राज्यपाल रमन डेका आज भिलाई स्थित रुंगटा इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी में नव प्रवेशी विद्यार्थियों के विद्यारंभ समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में समस्याओं की पहचान करने और ऐसे समाधान विकसित करने के बारे में सोचें जिनसे लाखों लोगों को लाभ हो सके। कार्यक्रम में राज्यपाल ने यूनिवर्सिटी के ड्रोन क्लब का उद्घाटन भी किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रकुल संसदीय संघ CPA के 11वें सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने संवाद और चर्चा जन विश्वास का आधार, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाएं किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की रीढ़ होती हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में खेल और युवा विकास से संबंधित चुनौतियों के अवसर विषय पर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव वर्चुअल रूप से शामिल हुए। बैठक में युवाओं को खेलों से जोड़ने और देश में खेल संस्कृति विकसित करने के लिए खेलो इंडिया की तर्ज पर नई युवा कल्याण योजना शुरू करने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही राज्यों में खेल विश्वविद्यालयों की स्थापना, खेल प्राधिकरण ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, खेल अधोसंरचनाओं के रखरखाव और मरम्मत के लिए विशेष बजट का प्रावधान करने तथा एकीकृत डिजिटल स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के विकास जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज नवा रायपुर स्थित श्री सत्य साई अस्पताल में आयोजित 31वें स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बायोनिकल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस मौके पर श्री जायसवाल ने कहा कि नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं है बल्कि करुणा और अटूट समर्पण का परिचायक है। उन्होंने नर्सेस को स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि नर्सेस अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा करती हैं। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एनआईटी रायपुर एफआईई को आज नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत उद्यमिता शिखर सम्मेलन में भारत इंक्यूबेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार स्टार्टअप और नवाचार इकोसिस्टम में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार दिल्ली सरकार के मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा ने एनआईटी रायपुर एफआईई के फैकल्टी इंचार्ज डॉ अनुज कुमार शुक्ला को प्रदान किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य कल 14 सितंबर से 3 दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर आएंगे। अपने प्रवास के पहले दिन श्री आर्य 14 सितंबर को बिलासपुर में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों, सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगे। वहीं श्री आर्य 15 सितंबर को सिकल सेल एनीमिया स्वास्थ्य जांच शिविर और युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे एसईसीआर रेलवे जोन बिलासपुर के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। अगले दिन 16 सितंबर को वे नियमित विमान से नई दिल्ली लौट जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। घटनास्थल से एक 12 बोर बंदूक, BGL लॉन्चर सहित विस्फोटक और नक्सल सामग्री बरामद की गई है। इसी जिले में सुरक्षा बलों ने बासागुड़ा और मोदकपाल थाना क्षेत्र से 7 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक माओवादी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों के पास से विस्फोटक और प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई है। वहीं बीजापुर जिले में ही कल मुठभेड़ में मारे गए 2 माओवादियों की शिनाख्त कर ली गई है। इन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मारे गए माओवादियों में हिड़मा पोड़ियाम और मुन्ना मड़कम दोनों नक्सली संगठन PPCM के सदस्य थे और इंद्रावती क्षेत्र में सक्रिय थे। उधर माओवादियों के दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की प्रमुख सुजाता ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में राज्य के DGP और पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सुजाता पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। वे पश्चिम बंगाल में मारे गए शीर्ष नक्सली कमांडर किशन जी की पत्नी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हाल ही में किए गए GST सुधारों से व्यापार और कृषि क्षेत्र को लाभ मिलेगा तथा व्यापारिक गतिविधियां सरल होंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि को दर्शाता है जो भारत को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बनाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उपकरण अब GST में 5% स्लैब में है जिससे प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही दैनिक जरूरतों की चीजों के दाम कम होने से प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी।
ये GST रिफॉर्म किसानों के लिए तो एक वरदान जैसा है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर, अलग अलग इनमें GST था जिसको घटाकर मात्र 5% किया गया है। इससे किसानों के लागत में काफी कमी होगी और कृषि को बढ़ावा देने में ये GST रिफॉर्म बहुत बड़ा सहायक होगा। कीटनाशक और भी कई जो कृषि से संबंधित चीजें हैं उसमें भी GST रिफॉर्म से उनका कीमत काफी सस्ती होगी।
प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में आगामी 17 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। ये पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलेगा। छत्तीसगढ़ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संचालक डॉ अश्विनी देवांगन ने बताया कि 14 सितंबर तक ऐसे सभी ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया जाएगा जहां साफ सफाई की जरूरत होगी।
स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन औपचारिक रूप से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य पूरे छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमने 14 सितंबर तक सभी ग्राम पंचायतों में ऐसे जगह को चिन्हांकित करने के लिए कहा हुआ है जिनको देखने से लगता है कि इसमें सफाई की आवश्यकता है, लोगों की सहभागिता की आवश्यकता है। ऐसे जगह को हम 14 सितंबर तक चिन्हांकित करेंगे।
और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में नीट यूजी के तहत एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है। इस चरण में पात्र अभ्यर्थियों के लिए नए पंजीयन की अंतिम तिथि 17 सितंबर तय की गई है। कोंडागांव जिले के ग्राम पदेली स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र में आज करंट लगने से एक बच्ची की मौत हो गई। इस मामले में परियोजना अधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांजगीर चांपा जिले में रकम दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाली चिटफंड कंपनी के दो शेयर होल्डरों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सीलपहरी इलाके में स्थित सोन नदी में रेत भरने गए दो मजदूरों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं कोरबा जिले के ग्राम उतरदा में आज खेत में काम कर रहे पति पत्नी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। इस हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। पत्र सूचना कार्यालय द्वारा केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने बीजापुर में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि बस्तर रेड कॉरिडोर से डेवलपमेंट कॉरिडोर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। वहीं जिले में 7 माओवादी गिरफ्तार। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य 3 दिवसीय प्रवास पर कल बिलासपुर आएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।